मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 18 मार्च 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। फ्रेंड्स, हालांकि मेरी 15 दिन की जो क्लासेस होती हैं, मेरी वो क्लासेस संपन्न हो गई हैं, लेकिन आज का यह जो आप डेली ऑडियो लेक्चर सुन रहे हैं, इसके तहत मैं जो न्यूज होती हैं, चाहे वो दूरदर्शन की न्यूज हो, आकाशवाणी की न्यूज हो या समाचार पत्रों की खबरें हों, उन्हें शामिल नहीं कर पा रहा हूं। और उसका कारण यह होता है कि 15 दिन जो बड़े खूबसूरत तरीके से बीतते हैं, कहीं न कहीं शारीरिक और मानसिक रूप से आपके अंदर थकान भी पैदा कर देते हैं। और वो जो थकान भी होती है वो कोई थोड़ी मोड़ी थकान नहीं होती, छोटी बड़ी थकान नहीं होती, बल्कि छोटी मोटी थकान नहीं होती, बल्कि बहुत बड़ी थकान होती है। इसी कारण मैं पहले से ही सेफर साइड में सोमवार का भी जो डेली ऑडियो लेक्चर होना है उसे रिकॉर्ड करके रख देता हूं। तो मित्रों, कहने का अर्थ यह कि आज का मेरा यह डेली ऑडियो लेक्चर भी चूंकि पहले से ही रिकॉर्डेड है, इसलिए जो करंट अफेयर्स हैं उन्हें मैं इसमें शामिल नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन इसके बाद से जो आप डेली ऑडियो लेक्चर सुनेंगे उसमें डेफिनेटली आपको अब पहले की तरह ही करंट अफेयर्स जानने का अवसर मिलेगा। मित्रों, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा। आइए अब मैं आज के डेली ऑडियो लेक्चर पर सीधे सीधे आता हूं और आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर के तहत मैं आपसे संगम काल के परिदृश्य पर कुछ बातें करना चाहूंगा। संगम काल का परिदृश्य, मित्रों, ऐसा निर्णय मैंने जानबूझकर के इसलिए लिया है कि इससे पहले के आप देखिए कि जितने भी आपने डेली ऑडियो लेक्चर सुने हैं, नो डाउट उनका सबका संबंध इतिहास से तो है ही, लेकिन इतिहास को मैंने बड़े अलग तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश की है ताकि इतिहास की अवधारणा आपके दिमाग में बन सके। देखिए, समय की एक सीमा होती है और उस मर्यादा का पालन मुझे करना ही पड़ता है, इसलिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में तो मैं नहीं चीजें रख पाता हूं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि जितनी भी थोड़ी सी बातें मैं आपके सामने रखूं उन्हें एक प्रकार से संपूर्णता के साथ तो रखूं ही। और उसके तहत मैंने जो तीन घाटी संस्कृतियां रही हैं नदी घाटी की, उनके बारे में बताने की कोशिश की है और उनके आपस में क्या संबंध रहे हैं उन्हें भी आपके सामने रखा है। और उससे पहले खासकर जो मानव जाति का जो विकास हुआ है और मानव ज्ञान का जिस तरीके से विकास हुआ है उसे भी हर संभव कोशिश की है कि सरल से सरल रूप में आपके सामने रख सकूं। तो दोस्तों, उसी क्रम में मैं अब आज आपसे संगम काल के बारे में बात करने जा रहा हूं। ऐसा क्यों? बहुत स्पष्ट कारण है इसके। पहला तो यह है कि मैंने तीन नदी घाटियों की संस्कृतियों के बारे में बात की है जिसमें एक सिंधु घाटी की सभ्यता है। अगर मैं क्रम से आता तो डेफिनेटली मुझे सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद वैदिक संस्कृति पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैं उस पर बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वैदिक संस्कृति पर भी आपके लिए ढेर सारी पढ़ने की सामग्री अवेलेबल है और आप बहुत कुछ इसके बारे में जानते भी होंगे। इनफैक्ट हाँ, बातों को एक्सप्लेन करके अलग तरीके से बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, आपकी पकड़ बनाई जा सकती है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ऐसा टॉपिक लेना चाहिए जिसके बारे में पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, मिलता भी है तो बहुत अच्छे तरीके से नहीं मिलता है, जबकि वह आपके सिलेबस का बहुत अनिवार्य पार्ट है। ये जो संगम साहित्य की जो मैं बात कर रहा हूं, ये जनरल स्टडीज के तहत भी इस पर प्रश्न पूछे गए हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो ये होता ही होता है। मुझे अपने एग्जामिनेशन के वो 1980 के दिन याद आ रहे हैं, सन 1980 के। मित्रों, जबकि संगम साहित्य हमारे सिलेबस में था, बाकायदे मेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस में था, प्री में भी कभी कभार कोई प्रश्न पूछ लिया जाता था संगम लिटरेचर को लेकर के, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह था कि संगम साहित्य पर पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। आप यकीन करेंगे कि संगम साहित्य के बारे में जबकि मैं मेंस की तैयारी कर रहा था मुझे ABCD की भी जानकारी नहीं हो पाई थी। देखिए, मैं आज से लगभग 40 साल पहले की बातें कर रहा हूं। उस समय एक तो हिंदी में मटेरियल ही अवेलेबल नहीं होता था, अगर अवेलेबल हो तो आप उसे मंगाएंगे कैसे, उस तरह की सुविधाएं नहीं थी। उस समय कोई amazon.com जैसा नहीं हुआ करता था, स्मार्टफोन तो होते ही नहीं थे कि आपको जानने को कहीं कुछ मिल जाए। हाँ, किसी से थोड़ा बहुत पूछ लिया, बस वही सामग्री अवेलेबल होती थी। हिंदी में अब तो थोड़ी सी सामग्री अवेलेबल हो गई है, लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में वह नहीं है। तो चूंकि आपके सिलेबस में है, प्री में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेंस ऑप्शनल में भी है, यहां तक कि मेंस में भी इस पर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जनरल स्टडीज के तहत, और इसका थोड़ा सा अभाव है इस पर सामग्री का, तो मुझे लगा कि इस पर थोड़ी सी बात की जाए। और बात करने का जो मैंने कोण चुना है, जो एंगल चुना है, इनफैक्ट संगम साहित्य के बारे में बताने का एंगल नहीं चुना है, बल्कि जो मेरा कोण है मित्रों, वो इस रूप में है कि किस तरीके से ये जो तमिल साहित्य है या जो तमिल संस्कृति है जो साहित्य में झलकती है, वह जो हमारी मूल धारा है संस्कृति की, या जिसे आप वैदिक संस्कृति कह सकते हैं, या जिसे उत्तर भारत की संस्कृति कह सकते हैं, उसके बिल्कुल समानांतर है। तो मैं इसी एंगल से आपसे बात करूंगा। अब आप देखिए कि उत्तर भारत, वैदिक संस्कृति बिल्कुल गंगा का मैदान उत्तर भारत, राइट, और तमिल संस्कृति सुदूर दक्षिण, ये नहीं कि नर्मदा के बाद ही हम दक्षिण भारत की शुरुआत कर दें, ये बिल्कुल सुदूर दक्षिण। और जब जिसे हम तमिल प्रदेश कहते हैं, जो संगम साहित्य है ये तमिल प्रदेश में लिखा गया है, जिसे हम तमिल प्रदेश कहते हैं, वो तमिल प्रदेश ज्योग्राफिकली है कहां? कृष्णा और तुंगभद्रा, इन दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है मित्रों, वो तमिल प्रदेश कहलाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच। यहां पुराने समय में, जिसका पीरियड रहा है लगभग 100 से 250 ईयर्स BC, 100 से 250 वर्ष पूर्व, तीन राजाओं ने शासन किए, तीन शासक यहां हुए, जिसमें एक थे चेर वंश के, दूसरे थे चोल वंश के, और तीसरे थे पांड्य वंश के। इनके बारे में आप जानते हैं, इतिहास में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी होगा। तो इस टाइम के बीच में, जो टाइम है 100 से 250 BC के बीच में, तीन संगमों का आयोजन किया गया। अब आप देखें कि ये तीन संगमों का आयोजन किया गया, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि इन तीन संगमों को ही हम संगम युग कहते हैं। संगम का मतलब क्या होता है? तेरे मन की गंगा और मेरे मन की जमुना, राधा बोल संगम होगा कि नहीं, ये गाना आपने सुना होगा। तो संगम जो हमारे इलाहाबाद में है, जहां तीन नदियों का संगम है, यानी कि मिलना, समागम, तीन नदियां जहां आपस में मिलती हैं वो संगम है। तो यहां किनका मिलन हो रहा था मित्रों? यहां मिलन हो रहा था तमिल विद्वानों का। इसे आप संगोष्ठी भी कह सकते हैं, इसे आप सम्मेलन भी कह सकते हैं, इसे आप सेमिनार भी कह सकते हैं, उसे ही यहां कहा गया है संगम। तो विद्वानों की सभाएं होती थी, विद्वान यहां इकट्ठे होते थे और आपस में डिस्कशन करते थे, उन्हें ही हम कहते हैं संगम। तो इस तरीके से तीन सभाओं का आयोजन किया गया, और ये जो सभाओं का आयोजन किया गया है, ये जो पांड्य शासक थे, याद रखिए पांड्य शासक, उनके संरक्षण में किए गए। देखिए, इनकी मैं जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि प्री में भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो मैं छांट छांट करके उन तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूं जिनके पूछे जाने की संभावना रहती है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो तीनों सभाएं हुई हैं, तीनों जो संगम हुए हैं, ये पांड्य राज्यों के संरक्षण में हुए हैं, और पांड्य राज्य बहुत ही इस माने में बहुत ही, मतलब आप कह लीजिए कि कुशल शासक माने जाते थे, वो कला साहित्य संस्कृति को बहुत ही प्रश्रय देते थे। नो डाउट कि चोल शासक भी देते थे, लेकिन ये जो हुआ है ये पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ है, और ये जो संगम हुए हैं वो मदुरई में हुए हैं, ये उनकी राजधानी हुआ करती थी पांड्यों की, मदुरई। तो ये प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपको थोड़ी ये बातें जाननी जरूरी है। तो मित्रों, इस दौरान बड़े जो विद्वान होते थे तमिल भाषा के, वो इकट्ठे होते थे, वो अपनी बात करते थे और फिर साहित्य की रचना करते थे, राइट। और उनके साहित्य में जो कुछ भी बातें लिखी हुई हैं, उसी के आधार पर, उन्हीं के आधार पर हम तमिल युग के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारियां हासिल कर पाते हैं कि उस समय राजा की क्या स्थिति थी, किस तरह की सामाजिक स्थितियां थी, आर्थिक स्थितियां किस तरीके थी, धर्म और दूसरे जो क्षेत्र होते हैं कला साहित्य संस्कृति के, उनकी स्थितियां क्या थी। इन सब को जानने का जो हमारे पास सोर्स है इनफैक्ट वो संगम साहित्य ही है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा, एक तो है वैदिक संस्कृति जो बिल्कुल उत्तर में है, जिसे आप आर्य संस्कृति कह सकते हैं, राइट। और दूसरा है तमिल संस्कृति जो सुदूर दक्षिण में है। तो ये दो भिन्न संस्कृतियां हैं। अगर उस तरीके से आप देखें, आर्य और द्रविड़ की दो भिन्न संस्कृतियां हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि संगम साहित्य में, संगम युग में, या कह लीजिए कि ये जो संगम है, ये इन दोनों संस्कृतियों के मिलन का परिणाम है, ये दोनों के समन्वय का परिणाम है, और वो वहां बहुत साफ तौर पर दिखाई देता है। इनफैक्ट जब आप संगम साहित्य पढ़ेंगे तो आपको यह जानना मुश्किल हो जाएगा कि इसमें इसमें से किस तत्व को आप किस सीमा तक उत्तर भारतीय संस्कृति, या यूं कह लीजिए कि आर्य संस्कृति से अलग कर पाएंगे। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको ढेर सारी ऐसी चीजें मिलेंगी कि लगेगा कि ये तो उत्तर भारत में सब जगह है। उदाहरण के तौर पर आपको वहां रामायण और महाभारत की कहानियां मिलेंगी, रामायण और महाभारत की कहानियां। उसमें आपको बकायदे शिव का उल्लेख मिलेगा, असुरों का उल्लेख मिलेगा। तो जब आप इन उल्लेखों को पढ़ेंगे, या मनुष्य के जो तीन तरह के ऋण होते हैं, पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण, तो वो आपको वहां पढ़ने को मिलेंगे, तब आपको लगेगा कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उत्तर भारत का ही साहित्य पढ़ रहे हैं। और नो डाउट कि वहां बकायदे जो संगम जो हुआ है वहां, उसमें संस्कृत भाषा का भी अपना योगदान रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि किस तरीके से संगम साहित्य एक प्रकार से केवल वहां के विद्वानों के ही संगम को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बल्कि कहीं ना कहीं वो उत्तर और दक्षिण भारत के संगम को भी प्रतिध्वनित करता है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। मित्रों, जब आप वहां की व्यवस्थाओं पर जाएंगे तो ढेर सारी व्यवस्थाएं आपको ऐसी मिलेंगी जो ज्यों की त्यों उत्तर भारत में थी। उदाहरण के तौर पर जैसे वहां भी राजतंत्र जो था वंशानुगत था, राजा वंश से बनते थे, राजा अत्याचार नहीं कर सकता था, हालांकि वो निरंकुश हो सकता था, वंशानुगत था, निरंकुश होता भी था, लेकिन वह जनता पर अत्याचार नहीं कर सकता था क्योंकि उसे अपनी परंपराओं का ध्यान रखना पड़ता था। और वहां की जो जनता है, अगर परंपराओं का कोई ध्यान नहीं रखता है तो बहुत असंतुष्ट हो जाती थी। तो वहां भी जो सिद्धांत था वो यही था कि जनता आपकी प्रजा है, आपको उसके साथ पुत्रवत व्यवहार करना है, या यूं कह लीजिए कि स्वयं को माता पिता की तरह मानना है। अब आप देखिए कि वो पूरी तरह से आपको उत्तर भारत के सिस्टम पर ढलता हुआ चीजें दिखाई देंगी। इसके बाद दोस्तों, वहां भी बिल्कुल वही स्थिति देखने में आती है स्त्रियों की, और क्लासेस समाज में उसी तरह के वर्ग हुआ करते थे जिस तरीके से हमारे समाज में वर्ग होते थे। सामाजिक जीवन में बकायदे जो राजा होता था वो तो मॉडल होता था, ऐसा नहीं कि वो राज्य का ही प्रमुख है, सामाजिक जीवन का आदर्श होता था। और वहां जो धनी वर्ग के लोग थे वो बड़े बड़े मकानों में रहते थे, पक्के मकानों में रहते थे, जो निर्धन वर्ग था वो कच्चे मकानों में रहता था। महिलाओं की स्थिति वहां भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, जिस तरह से बाद में हम उत्तर भारत में पाते हैं। और खासकर अगर पति की मृत्यु हो जाए, विधवा हो जाने पर उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती थी, उनका जीवन बहुत ज्यादा दूभर हो जाता था। वो हरी सब्जियां, हरी चीज नहीं खा सकते, सोचिए, ठंडे पानी में वो नहा नहीं सकते, उन्हें अपने बाल कटवाने पड़ते थे। अब इन सब से तुलना करते चले जाइए आप उत्तर भारत की जो संस्कृति रही है, वो आभूषण नहीं पहन सकती थी, उन्हें बिल्कुल सादा भोजन करना पड़ता था, मसाले वाला भोजन नहीं कर सकते थे। और इसीलिए कहा जाता है कि उनको लगता था कि ऐसा जीवन जीने से तो ज्यादा बेहतर है कि पति के साथ अपने जीवन को समाप्त ही कर दिया जाए, यानी कि वो सती हो जाना ज्यादा पसंद करती थी। फिर जो उच्च वर्ग के लोग थे उनमें बकायदे गायन, नृत्य, इन सब के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण था, उनमें बहुत ज्यादा रुचि थी। और याद कीजिए जो मैंने आपको सामंतवादी व्यवस्था के बारे में बताया था, तो सामंतवादी व्यवस्था की जो झलक है वो बाकायदे आपको संगम साहित्य में भी दिखाई देगी। वहां की अगर आप धार्मिक सिद्धांतों को आप देखेंगे तो बकायदे जो वैदिक संस्कृति है उसका जबरदस्त प्रभाव वहां आपको देखने को मिलेगा। उन लोगों का फलित ज्योतिष पर बहुत ज्यादा विश्वास था, बिखरे हुए बाल वाली स्त्री को वो लोग अपशकुन मानते थे, बच्चों को बकायदे ताबीज पहनाए जाते थे ताकि भूत प्रेत जादू टोने से उन्हें बचाया जा सके। बकायदे अगर वर्षा करानी है या अपनी कोई इच्छा पूरी करनी है तो बकायदे पूजा पाठ होती थी, धार्मिक विधियां होती थी, जो बरगद का पेड़ है उसको वो लोग भी देवता मानते थे। तो ये सारी चीजें आप देखिए कि बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे कि उत्तर भारत में है, और वहां भी आपको जो दूसरे देवता हैं उन देवताओं के साथ शिव भी मिलेंगे, बलराम भी मिलेंगे, विष्णु भी मिलेंगे, कृष्ण भी मिलेंगे, अर्धनारीश्वर भी मिलेंगे, ये सब के सब देवता जो उत्तर भारत के रहे हैं वहां भी देखने में मिलते हैं। और वहां भी दक्षिण भारत में भी आपको बकायदे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी उस समय थे, लेकिन जो प्रोमिनेंट जो रिलीजन था वह डेफिनेटली हिंदू धर्म ही था। तो मित्रों ये मैंने थोड़े से परिदृश्य को आपके सामने रखा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इतना सुनने के बाद आपको दो चीजें तो बहुत क्लियर हो गई होंगी। पहला यह है कि संगम साहित्य क्या था, ये क्लियर हो गया होगा सामान्य तौर पर, और दूसरा ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक चीजें बिल्कुल एक जैसी लगभग लगभग दिखाई देती हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा राष्ट्र परिवहन के संचार माध्यम के उस तरह के साधन नहीं, इसके बावजूद भी आप देखिए कि किस तरह से सांस्कृतिक एकता दिखाई देती है। यानी कि जब सांस्कृतिक एकता या इसी से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है या निबंध लिखने के लिए कहा जाता है तो आप उसमें बाकायदे संगम साहित्य का रेफरेंस देकर कुछ महत्वपूर्ण बातों को लिख सकते हैं। ये आपके उत्तर में एक वैल्यू एडिशन होगा। तो दोस्तों अब वक्त समाप्त कहने के लिए कह रहा है, तो इसी के साथ ही अब मैं इस डेली ऑडियो लेक्चर को आज यहीं समाप्त करता हूं, और कल से फिर हम लोग बाकायदे जो करंट न्यूज है उनको भी आधार बनाते हुए डेली ऑडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों अब मुझे इजाजत दें, नमस्कार।